नारायण 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 नारायण, इसमें ऊपर भगवान का नाम नहीं है। कोई लिखो, कहीं पूजा लिखो, भगवान का नाम पहले लिखो। नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात हो तो, आप कोई बात हो तो पूछो।
ज्ञान यज्ञ जप यज्ञ ज्ञान यज्ञ और ये करण निरपेक्ष के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ आता है क्या? और ब्रह्मागमावतर यज्ञ यज्ञ नहीं जुवती, ये क्या ज्ञान यज्ञ है?
विचार की प्रधानता होती है ज्ञान यज्ञ। विचार दो तरह का होता है, एक करना किया जाता है विचार, और एक विचार भीतर से प्रकट होता है। तो किया जाए वो विचार है, वो क्रिया है, वो क्रिया है। विवेक होता है सत असत का, वो एक क्रियाजन्य भी होता है। तो क्रियाजन्य विवेक इसमें क्रिया है, और विवेक स्वतः होता है, वो स्वाभाविक प्रकट होता है। प्रकट होना तो
सिद्धावस्था है
ना, सिद्धावस्था नहीं। एक ये पूर्जाया है, इसमें बहुत बढ़िया बात रखी है। नारायण 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 परमबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बंसी विभूषितकलाल्लवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनगन्धफलाधभूष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं विजानामि। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने अस्तु गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुकमले राम 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 नारायण 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 नारायण। देखो एक बात मैंने बहुत बार कही है, फिर भी उस बात को हमारे भाई बहन पकड़ते नहीं है। वो ये बात है कि जो प्राकृत पदार्थों के लिए जैसे वस्तु की क्रिया की व्यक्ति की आवश्यकता है, पारमार्थिक उन्नति के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने एक ही मांग रखा है कि कई दिन जप करेंगे, तप करेंगे, ऐसा संयम करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, एकांत सेवन करेंगे, तब होगा। ये जो मांग रखा है ना, अच्छी बात है, परंतु ये बात वास्तव में सत्य नहीं है। अब यूं कौन कह सकता है बताओ? इससे कूड़ा करकट दूर होता है, फायदा होता है, लाभ होता है, इसमें संदेह है ही नहीं मेरे। पर परमात्म तत्व की प्राप्ति आप चाहते हो, वो इनसे नहीं होती। नाशवान पदार्थ है, उत्पत्ति विनाशशील है, उसके लिए पदार्थों की क्रिया की बहुत जरूरत है, परिश्रम की बहुत जरूरत है। पर परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए पदार्थ की जरूरत है, न क्रिया की जरूरत है, न परिश्रम की जरूरत है। ये कायदा दो है, मैं कई बार कहा है, पर क्रिया तो होती रहे, क्रिया होती रहो भले ही, करने की जरूरत नहीं है। होती रहे तो बाधा नहीं है। क्रिया को मैं बंद नहीं करता हूँ, वस्तु को कोई मैं बंद नहीं करता हूँ। परंतु क्रिया के अधीन परमात्मा की प्राप्ति है ये नहीं है, भाव के बोध के अधीन है और अपनी उत्कट अभिलाषा के अधीन है। और बात पूछी वो बात कहता हूं, मैंने ये विवेचन किया है कि परमात्मा का स्वरूप सम है। गीता में कर्मयोग की महिमा है, वो कर्म की महिमा नहीं है, योग की महिमा है, कर्म की महिमा नहीं है। दूरे नहीं है बरंग कर्म बुद्धि योगा दूर से निकलते कर्म, कर्म समकक्ष में ही नहीं आता। जैसे कौन बड़ा है ऐसे होती है, उसको बरूबर करो तो बरूबर करना वहां पड़ता है जहां थोड़ा फर्क होता है। दूरे नहीं अबर हम एक कंकर देर का जाए, इस कंकर में और पार में कितना फर्क है, कि राहो साहब कंकर को पार के बरूबर रखो, अरे बरूबर क्या रखे, पार कंकर सब सीधे दिखते हैं। तो कर्म दूरे नहीं अबर हम, साथ में रख करके जरूरत नहीं है, ये समकक्ष हो ही नहीं सकता कभी, ये उसे समकक्ष कैसे होगा। अरे बुद्धि योग है तुम्हें तो योग में बुद्धि सुनो, योग ना हो सम तुम योग हो चाहते समता। अब एक बात बताता हूं ध्यान दें, समता सबको प्राप्त है और क्रिया और पदार्थ ये सबको बरोबर प्राप्त नहीं है। दो आदमियों को बरोबर धन नहीं है, दो की बुद्धि नहीं है, दो के बराबर विद्या नहीं है, दो का परिश्रम बरोबर नहीं है, विचार बरोबर नहीं है, दो आदमियों का भी समता सबको प्राप्त है, बरोबर पूरी की पूरी प्राप्त है सबको, पशु पक्षी कसाई और पंडित और ज्ञानी अज्ञानी सबको सत्य प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा सम है तो उसमें प्राप्ति में विषमता होगी, उसके व्यापक पर में विषमता होगी, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम ऐसा होगा, संभव ही नहीं है। उसमें मैंने एक व्याख्यान की, उस पर ये लिखा है लेख, तो मैंने ये कहा कि जैसे अपने झूला झूलते हैं तो झूला है वो इधर गया इधर गया इधर यूं आता जाता रहता है, उस आते जाते में भी ठीक जिस टहनी से बंधा है उसकी समता में आवेगा ही, बिना समता आए इधर से उधर चला जाएगा, क्या सोच लो, इधर से उधर जाएगा तो समता तो आवेगी ही, साम्यावस्था में होगा ही, आना ही पड़ेगा, बिना साम्यावस्था में इधर से उधर कैसे जाएगा। दूसरी बारीकी देखा जाए तो हरदम साम्यावस्था में रहता है वो, यहाँ साम्य यूं है तो यहाँ साम्य यूं है तो यहाँ साम्य यूं है तो यहाँ साम्य ऐसे, सब जगह समता ही मुख्य है। ऐसे समता मात्र प्राणी में स्वतः सिद्ध है, जितना नींद में सुख मिलता है उतना किसी द्रव्य में किसी अवस्था में सुख नहीं मिलता है, नींद के समान सुख नहीं है, नींद नहीं हो तो जो पागल आप, पैसों के बिना पागल नहीं होता, रोटी नहीं मिले तो पागल नहीं होता, कपड़ा नहीं मिले तो पागल नहीं होता, जल नहीं मिले तो पागल नहीं होता, नींद नहीं आवे तो आ जाए पागल, हो जाए पागल। तो नींद में जितना विश्राम मिलता है, शांति मिलती है और शक्ति मिलती है शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में एक नई स्फूर्ति नई ताकत आती है, उतनी किसी पदार्थ से किसी भोग से किसी संग्रह से किसी मान सत्कारी से किसी पद से किसी अधिकार से नहीं आती। इस बात पर आप गहरा विचार करें, कोरा सुन लिया नहीं है, स्वयं विचार करें सोचें। तो क्यों ऐसा होता है, नींद में क्या है, नींद में संसार का चिंतन छूटता है, नींद आ जाती तो कुछ याद नहीं रहता, तो संसार का संबंध छूटने से जो सुख है वो संसार के संबंध से संभव ही नहीं है, और क्रिया साध जितना साधन करोगे, परिश्रम साध साधन करोगे, उसमें संसार का सहारा लिए बिना कोई क्रिया कोई अभ्यास आप कर सकते ही नहीं। किसी की ताकत हो तो बोलो बता दो, बिना संसार का मन बुद्धि का इंद्रियों का शरीर का सहारा लिए बिना कोई अभ्यास कर सकते हो बताओ। और अभ्यास में क्या होता है, आज खुली बात कहता हूँ, घबराना नहीं और उल्टा अर्थ मत लगा लेना। क्रिया का आदि और अंत होता है, तो अंत आदि अंत होने वाले से अनंत कैसे मिल जाएगा। अनंत तत्व नाशवान से कैसे मिलेगा अविनाशी तत्व। तो नींद में क्रिया बंद होती है, उससे जो सुख मिलता है वो सुख क्रियाजन्य भोग में नहीं मिलता। क्रियाजन्य भोग में थकावट होती है, ह्रास होता है, गिरावट होती है, अपना तो ह्रास होता है, वस्तु का नाश होता है। और परमात्मा की प्राप्ति से शांति मिलती है। जब हम भूल जाते हैं संसार को, नींद में याद नहीं रहती, उससे ताजगी आती है शरीर में, मन बुद्धि इंद्रिया में, सब में एक स्फूर्ति और ताजगी आती है, काम करने की क्षमता आती है। और जान करके उनको अगर छोड़ दो, भुला दो, तो कितना लाभ होगा। ये प्रतंत्रता है, नींद की जो अक्रिय अवस्था है ये पराधीन है, नींद का अधीन है, नींद होता है नींद नहीं आती। अरे स्वयं ऐसा आप जागृत की नींद अलग समझ लो, जागृत अवस्था में नींद अवस्था हो जाए महान फल मिलेगा। वो चित्त वृत्ति निरोध कर दे, समाधि करे, वो समाधि और चीज है, ये समाधि और चीज है, ये सहजावस्था है। आपको किन शब्दों में कहूं, मेरे को आता नहीं इतना, परंतु आप अपने आप से असंतुष्ट कभी होते हैं क्या? क्रिया और पदार्थ से तो आप उकता जाते हैं, पर अपने आप से भी कभी उकताते हैं? आपका जो गुणापन है, आपकी जो सत्ता है, उससे कभी उपरती होती है, कभी वैराग्य होता है, उकताहट होती है कभी किसी को ही? होती हो तो बताओ, बोलो। अपने आप से, अपने आप के बाद हुआ सत्ता, आपका होनापन, उससे तकलीफ हुई है कभी किसी को? वो होनापन आपका सम है, विषम नहीं है। वो कम ज्यादा नहीं होता, या तो मैं ज्यादा हो गया या मैं कम हो गया। आपकी सत्ता में कमी ज्यादा होती नहीं, पदार्थों में कमी ज्यादा हुए बिना रहेगी नहीं, अरे आप में कमी ज्यादा होगी नहीं, कभी नहीं होगी, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। कैसे हो जाएगी? समरूप है आपका। अरे गीता का समत्वम योग उचित, समता का नाम योग है। मानो यही उतेज दस सर्गो ये शान साम्य स्थित माना, उन पुरुषों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, जिनका मन साम्य अवस्था में प्राप्त हो गया, समता आ गई मन में, राग द्वेष हर्ष शोक ये जिसमें नहीं होते, उन पुरुषों ने संसार को यहाँ जीवित अवस्था में ही जीत लिया, विजयी हो गए। राग द्वेष होता है, इनके भीतर भी समता आती है, आपका चिंतन होता है उसमें भी समता आती है। एक चिंतन छूटकर दूसरा चिंतन शुरू होता है, बीच में निष्क्रिय अवस्था होती है। नहीं तो पहला छूटा कैसे, गुजाया कैसे? चाहे वो बारीक से बारीक क्षण हो, परंतु पहला चिंतन छूटा फिर दूसरा चिंतन आया, तो बीच में अक्रिय अवस्था हुई। जैसे न्याय शास्त्र वाले कहते हैं, उत्पत्ति मात्र पदार्थ होती है, उन उत्पन्न वस्तुओं में क्षण मात्र निष्क्रियता रहती है, उसके बाद होती चीज। तो ये तो बात दृष्टांत है, साध का है, नई आयकों की बात कह दी बीच में, परंतु आप में साम्य अवस्था होती है, सम अवस्था बिना विषमता हो नहीं सकती। गोला है वो इधर से उधर जाएगा तो बीच में समावसम आएगा। तो ऐसे एक वृत्ति नष्ट हुई दूसरी वृत्ति पैदा होती है, उस समय में बीच में वृत्ति रहित अवस्था होती है। वृत्ति रहित अवस्था है वो वास्तव में आप की अवस्था है, तो वृत्ति की अवस्था नहीं है, वो जाकर स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था नहीं है, खुद आपका अनुभव उस समय में। इसको मैं कर्म निरपेक्षता में कहता हूँ, कर्म निरपेक्ष, किसी कर्म की निरपेक्ष में अंतःकरण बाह्यकरण किसी की आवश्यकता नहीं। इस बात से मैंने दो क्रिया बताई थी, ये क्रिया तो फिर पकड़ लेते हैं लोग, मगर क्रिया का नतीजा नहीं पकड़ते, ऐसे फुंकार बताया मैंने। ऐसे दो तीन चार बार करके और फिर बाहर श्वास को फेंक दो और बाहर ही रोक दो, तो क्षण मात्र के लिए सब संकल्प मिटते हैं, क्षण मात्र के लिए। फिर सावधान रहो, उनकी उपेक्षा करो, तो कोई भी संकल्प हो उसकी उपेक्षा उदासी, उसमें न राग करो न द्वेष करो न आग्रह रखो, निर्विकल्प होने का भी आग्रह मत रखना बिल्कुल, कि निर्विकल्प हो जाए, निर्विकल्प एक आफत और हो जाएगी, एक आफत नहीं हो जाएगी। ये बाधा क्या लागी है? मन को बस करने में यही मुख्य बाधा है, जहां बस करने चले हैं वहां नया संकल्प पैदा हो जाएगा बस करने का, आगे संकल्प तो नष्ट हुए नहीं, नया संकल्प और पैदा हो जाएगा, और वे रहेंगे वैसे वे मिटेंगे नहीं। बड़ी भारी बाधा है ये, कैसे दूर हो? उपेक्षा से, उदासीन होने से, इनकी उपेक्षा करो, बेपरवाह करो। ये जो एकांत का आग्रह है, ध्यान का आग्रह है, ये वास्तव में लाभ नहीं होने देता है। महत्व बढ़ेगा एकांत, आपके अंतःकरण में एकांत का अकेले रहने का महत्व बढ़ेगा, और महत्व होना चाहिए चिन्मय तत्व का, अवस्था का नहीं होना चाहिए, देश काल का नहीं होना चाहिए। देश काल का महत्व होगा तो वो संसारी जीव वो है, कुछ फर्क नहीं है। क्या फर्क है बताओ? जब महत्व देश का है, काल का है, वस्तु का है, व्यक्ति का है, अवस्था का है, चाहे निर्विकल अवस्था हो, इसका भी महत्व अंतःकरण में है तो असल निर्विकलता नहीं होगी, समय पर होगी। और निर्विकल्प तत्व है, उस तत्व में विकल्प है ही नहीं, ऐसा तत्व है। निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उसमें कोई फूरना नहीं है, उसमें अहंता ममता नहीं है, मैं मेरा उसमें नहीं है, ऐसा तत्व है स्वतः सिद्ध। उस स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना हो तो केवल इस संसार के झंझट से उकता जाओ, उकता करके और वो समय अवस्था साम्य अवस्था कैसे मिले, तो मिल जाइए, वो तो है आपकी। देखो सांसारिक उद्योग में उस उद्योग में क्या फर्क है, बड़ा भारी फर्क है कि सांसारिक वस्तु उत्पन्न होने वाली होती है और परमात्मा तत्व उत्पन्न होने वाला नहीं है, अनुत्पन्न तत्व है ज्यों का त्यों मौजूद है ज्यों का त्यों मौजूद है, उसमें तरह दृष्टि डालनी है। से शंकर सहज स्वरूप संभारा, सहज स्वरूप की दृष्टि हुई तो लाग समाधि अखंड अपारा, सहज स्वरूप स्वतः है, सबका सहज स्वरूप स्वतः है, आपका सहज स्वरूप जो है सत्ता, निष्क्रिय सत्ता, आपका स्वरूप सहज है, स्वभाव के बिना किए बिना बनाए है, ये वो आपका है। ये दूसरी इच्छा दूसरी उद्योग जो परिश्रम है इससे वास्तव में विक्षेप होता है, इससे आप उस सहज अवस्था से दूर होते हैं, ऐसी चीज है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे चेतन और अमल और सहज सुखराशी, क्या विशेष अविनाशी है, चेतन है और अमल मल रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है, मल नहीं है, और सुख राशि है, सुख की राशि ना ढेर, पूरा सुख ही सुख है। और वो सबको प्राप्त है, क्योंकि जीव तो है ही सब, तो वो अप्राप्त किसको है? अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सुख राशि है, किसको प्राप्त नहीं है? ये प्राप्त नहीं है तो जीव का स्वरूप कैसे हुआ? स्वतः प्राप्त है। तो नींद में सुख क्यों होता है? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होता, इसका सुख होता है। अगर वो इसी अवस्था में भी आप ऐसे समझो कि ऐसा है,
जागृत अवस्था में भी दूसरा चिंतन ना हो, इसका कोई उपाय है?
उपाय वही कह रहा हूँ, ऐसा उपाय नहीं है, ऐसा होता है। आपके खुद के जागृत अवस्था में कुछ भी चिंतन नहीं हो, ऐसा आपके खुद के अनुभव है, आप उधर ध्यान नहीं देते। कुछ भी चिंतन करते हैं, वो चिंतन छूट कर दूसरा चिंतन शुरू होता है, तो बीच में संधि होती है कि नहीं? जैसे रात दिन होते, दोनों की संधि होती है, संध्या होती है ना, ऐसे पहला विकल्प शांत हुआ, दूसरा संकल्प आपके उठा, तो उस संकल्प शांत होने में उठने बीच में खाली अवस्था है कि नहीं? वह खाली साम्य अवस्था है, सत्ता मात्र है उसमें। उसके होने के लिए मैंने कहा था इस श्वास बार फेंक बार रख दो। अरे क्या गए? और सच्ची बात है, बहुत ठीक है। तो आप इस क्रिया को करके देखो, जैसे मैंने बताई, दो तीन चार बार ऐसे करके ऐसे बार छोड़ दिया। ऐसे छोड़ देने के बाद जितना सुगमता से बाहर रहे उतना जोर मत लगाओ, फिर धीरे धीरे भेज ले लो। तो बाहर करते ही आपके मन में कोई संकल्प नहीं रहेगा। ये करके देखो, फिर आकर के पूछो, आपके बाधा लगे वो पूछो। मानो आप मेरे विकल्प होकर के देखो, तो मेरे विकल्प कैसे हो गए? हमारे तो संकल्प विकल्प तांता चलता ही रहता है, हरदम ही बीच में चिंतन होता रहता है, कैसे हो गए? तो उसके लिए स्थूल क्रिया बताई मैंने, स्थूल बहुत मोटी, क्या श्वास को बाहर फेंको, दो चार बार फेंक करके फिर श्वास को बाहर ही रख करके चुप हो जाओ। सुगमता से रहे उतना बाहर रखो, जोर मत लगाओ, पीछे धीरे धीरे रहने लग जाओ। एक बार तो निसंकल्प आप होंगे ही नियम है, करके देखो, अभी करके देख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी करके देख लो। कोई संकल्प नहीं है, करके देखो, होता है नहीं होता है? ये असली तत्व है। इस असली तत्व में स्थूल क्रिया बताई, श्वासों को बाहर छोड़ करके चुप हो जाओ। एक क्रिया बताई आंख की, आंख है ना, संकल्प भी होते, एक आदमी बैठ करते कई संकल्प भी होते हैं, तो आंखों को ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसा कर चुप हो जाओ, वे सब कट जाए, पुत्र हो जाएगी सबकी, कट 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 जाएगी और निर्विघ्नता आ जाएगी। उसे इतनी देरी आवे बनावे भी जरूर, इसमें संदेह नहीं है। उस निर्विघ्नता में जो सुख है वो सुख किसी भोग में, किसी संग्रह में, किसी लोक में, किसी अवस्था में नहीं है, है ही नहीं। हो विषयों से जो सुख होता है वो सुख भी उसी सुख का अंश है। कैसे है? बहुत बार मैंने कहा, फिर कहता हूं, आप कृपा कर ध्यान दें। जैसे कल्पना करो कि एक मेरे मन में आई कि मेरी एक घड़ी होनी चाहिए, मन में आ गई और मन मन में जोरदार इच्छा हुई कि घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी मिले। किस घड़ी में घड़ी मिले, क्या करूं? ऐसी व्याकुलता हुई, किसी ने आकर के और घड़ी दे दी और खुशी आ गई, मुझे घड़ी मिल गई। इसमें प्रक्रिया में तो ऐसा बताया है, कब आवृत्ति स्थिर होती है उसमें चेतन का आभास होता है, उसी प्रतिबिंब से सुख होता है, ये प्रक्रिया में है। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, घड़ी जब हमारे चाहिए ये मन में आई, उस समय में हमारे मन में घड़ी बसी हुई थी, घड़ी का चिंतन घड़ी घड़ी होता था, बार बार होता है कि चिंतन घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए। मिलते ही वो चिंतन छूटा, चिंतन छूटते ही निर्विकल्प हो गए। वो सुख निर्विकल्पता का है, घड़ी का नहीं है, पर मान लेते हैं घड़ी का। अगर घड़ी में सुख हो तो घड़ी के रहते दुख होना नहीं चाहिए। घड़ी में सुख है पर दुख कैसे होता है? किसी विषय में, किसी भोग में, उसमें सुख हो तो उस भोग के रहते हुए दुख आना नहीं चाहिए, चार दुख पीछे आ जाता है। तो उसमें सुख नहीं है, आपकी वृत्ति निर्विकल्प हो गई, उसे चिंतन मिट गया, उसमें सुख है, निर्विकल्पता का सुख है। इसमें जितना सुख है उतना आप समाधि लगाओ नहीं है उसमें। चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से हुआ है। मैं कहूं निरोध से वो सुख नहीं होगा जो संबंध विच्छेद से होता है। अपना मन नहीं, हम मन लगे नहीं, मन हमारा ही नहीं, ये तो प्रकृति का कार्य है। अपर ही हम तो अपर अपर करती है, अहम अहम ये भी अपर अपर करती है। ये हमारी है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं आपकी। इस संबंध विच्छेद से जो सुख होगा वो समाधि से नहीं होगा। अब ये बात तो आप करके देखो तो पता लगे, बिना की क्या पता। तो निर्विकल्पता आपसे आपकी अपने स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है, स्वाभाविक। और स्वतः स्थिति होती है, उसके समान की हुई स्थिति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। की हुई पुरुषार्थ साध्य है, क्रिया साध्य है, आपकी भावना साध्य है, और स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति में केवल संसार से विमुख होने मात्र से प्राप्ति होती है, उसके प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं करना पड़ता। वृत्तियों हटाने लिए करो, मकान में झाड़ू देना है तो कूड़ा करकट हटाने के लिए है, मकान बनाने के लिए नहीं है। ऐसे आप वृत्तियों को हटाओ तो हटाने तो आपको उद्योग है, मैं हटाने का उद्योग करते हटाना है ये भाव रहेगा, नहीं हटेगी, एक नया संकल्प और पैदा हो जाएगा। नहीं तो ये संकल्प मिटा, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक आपका स्वरूप है, जो चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी आपका स्वरूप है, स्वाभाविक सहज सुख राशि है, स्वतः सुख रूप है, स्वतः स्वाभाविक। वो सुख जाएगा नहीं कभी। अब उस सुख का कभी क्षण मात्र भी अनुभव हो तो अनुभव तो सबको होता है, ध्यान नहीं देते, इधर ख्याल नहीं करते। ख्याल अगर आप करें और समझ में आ जाए, छोड़ नहीं सकते आप। अब बताऊं तीसरी बात है, ये आंखों की बताई, श्वास की बताई, अब तीसरी बात बताता हूं। स्वाभाविक आप चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते हुए बैठे हुए ऐसा करो, कुछ चिंतन नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ भी चिंतन नहीं है, ऐसा निर्विकल्प होने का एक उद्योग है। उद्योग नहीं है ये चेष्टा नहीं है, मानो कोई विकल्प है नहीं। सच्ची बात है, विकल्प भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, प्राप्त संयोग होता है, वियोग होता है, व्यक्ति का भी संयोग होता है, वियोग होता है, वस्तु का भी संयोग और वियोग होता है। परंतु स्वतः आपकी स्थिति है, उसमें क्या संयोग है क्या वियोग है, न संयोग है न वियोग है। तम विद्या दुख संयोग है वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है, योग लगाने का नाम ये नहीं है, वियोग का नाम योग है। क्यों? कि वियोग करते ही नित्य योग में आपका योग होगा, नित्य वस्तु में योग आपका होगा, स्वतः है आपका, उसका अनुभव हो जाएगा। तो ये नित्य योग है, परमात्मा के साथ नित्य योग है, नित्य, कभी अनित्य योग नहीं है, नित्य योग है आपका। आप पदार्थों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, इनके द्वारा चाहते हो तो दूसरों का सहारा लेते हो, ये पराधीनता है, प्रतंत्रता है, ये अपरा प्रकृति का संयोग है, इसमें शांति नहीं मिलेगी। अभ्यास आप करते हो तो उसी मना नहीं करता हूं, ऊंधा मत चलना, आप अभ्यास करते करो, परंतु तत्व ये समझ लो कि उद्योग से नहीं है, वो स्वतः सिद्ध जागृत होगा तब होगा। स्वतः सिद्ध जागृत हमारे कुछ करना नहीं है, किसी से कुछ लड़ना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। शेर जी कहीं भी बात बताता हूं, शेर जी ने कहा कि नित्य कर्म के लिए मैं जाता तो मैं ऐसे पूछता मन को, बोलू क्या चाहिए, तो कहते कुछ नहीं चाहिए, मन से ही पूछते हैं, मन से उत्तर, बोल क्या चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाओ। तो मन जो लगेगा वो बहुत विचित्र लगेगा, चाहिए है कि रुख संगा करनी है, चलो रुख संगा पहले कर लो, ये पहले कर लो, फिर हाथ पैर धो करके बैठ जाओ, अब बोल क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, करना हो जो पीछे काम करना, अभी क्या चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो दो तीन चार बार कह दो मन से ही क्या चाहिए, मन कह दे कुछ नहीं चाहिए, ये केवल कहना नहीं, अनुभव करना का, अब हमारे क्या चाहिए, हमें तो एक भजन स्मरण करना है, एकांत बैठना करना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करने से ये चीज मिलती है, कुछ नहीं चाहिए तो वो स्वतः चीज मिलेगी, अरे कुछ भी चाहिएगा तो वो चीज नहीं मिलेगी। तो उसकी प्राप्ति स्वतः है सबको, सहज सुख राशि है, सहज ही, वो कृत्रिम नहीं है, सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, आपका उस पर पूरा अधिकार है, आपकी चीज है, किसी के बाप की नहीं है, परंतु आप बिल्कुल छोड़ो तो अनुभव हो तो जैसे तो छूटता है, छूटे नहीं छूटे। इसके लिए आप उल्टा अर्थ मत लगाना हो, क्या करना है कि कुछ नहीं करना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना है ही नहीं, करना क्या है, जब चेतन अमल सहज सुख राशि तो करना क्या है, करना कुछ है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में ये बात आप करो, एक दिन करो, मिनट दो मिनट के बाद फिर कर लिया, क्या चाहिए कुछ नहीं, क्या करना है कुछ नहीं करना है। जब ये चीज पकड़ में आ जाएगी तो इसको छोड़ नहीं सकोगे आप, इतना आनंद है इसमें, पर पहले पकड़ते हुए जरा थोड़ा सा है कि कुछ नहीं करना है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, यदा ये नेन्द्रिय अर्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों के भोगों में और क्रिया में आसक्ति नहीं होती और सब संकल्प कोई संकल्प नहीं है तो योगारूढ़ अवस्था हो जाती है, यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते और सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, उस समय वो योगारूढ़ होता है, स्वतः ना कोई पदार्थ की इच्छा है, ना क्रिया की इच्छा है, ना भक्त वस्तु की इच्छा है, ना अवस्था की, ना परिस्थिति की, हमारे कोई इच्छा है ही नहीं। ऐसे आप साधन चलते फिरते कर सकते हो, चलते फिरते कुछ नहीं, हमारे करना कुछ नहीं करना है, हमारे थोड़ी करना है, ये तो इंद्रियों का शरीर का धर्म है, तो होता ही रहता है, क्रियाशील ही है ये, प्रकृति अक्रिय नहीं होती, पर हमारा संबंध नहीं है इसके साथ, कोई संबंध नहीं। ऐसे आप अनुभव करके देखो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है, तो इसे करके देखो, इसको अनुभव करो, क्षण दो क्षण के लिए करो, हमारे कुछ नहीं करना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हाँ ना हमारे कुछ नहीं चाहिए, कोई काम है करना हमारे ही नहीं काम, कुछ धंधा करना है ना करना है ही नहीं, कुछ करना नहीं, आपकी स्वतः स्थिति हो गई स्वाभाविक, वो स्थिति आपकी है, ये करने करने के उसके बीच में बिखर गई, उसमें ऐसी लग गई वो बिखर गई, उसका ख्याल नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, करने के ज्ञान के ऊपर न करने का ज्ञान नहीं रहता। तो इस तत्व की प्राप्ति के लिए उद्योग कारण नहीं है, क्रिया कारण नहीं है, इसलिए तो क्या है, त्याग छांत निरंतर, कुछ नहीं करना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, कोई संकल्प नहीं, हमारे मन में कुछ है ही नहीं। ऐसे अंदर तक करके तो देखो, थोड़ा अनुभव करो, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। 10 बार 20 बार 50 बार दिन में कर लो, करते करते आपको इसका अनुभव होगा। अनुभव होगा तो छोड़ सकोगे नहीं, इसमें इतना विलक्षण रस है, इतना विलक्षण आनंद है, जो छोड़ सकोगे नहीं। पर पहले ये करना होगा, वृत्ति रहता मैं कुछ करना नहीं है। वाद नहीं हो तो कृषि अर्थ न अकृत्य नहीं, न करने से क्यों नहीं है, न करने का भी आग्रह मत रखना कि नहीं करना हमें नहीं, ना नहीं करना भी हमारा नहीं, करना भी हमारा नहीं। कर्मयोग में कर्मणि अकर्मीय पश्चेत अकर्मणि से कर्मीय, ये श्लोक है। ज्ञान योग में सर्वभूतस्म आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि, ये है। भक्ति योग में योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ये है। साधक संघ ने लिखा है कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, योमाम पश्य सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखा था और मेरे में सबको देखे, सब में अपने आत्मा को देखे, आत्मा में सबको देखे। जैसे कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म है, ऐसे सर्वभूत आत्मा सर्वभूत आत्मनि, योमाम पश्य सर्वत्र सर्वं चमी पश्यति, एक परमात्मा ही रह जाए। करिए तो करके देखो, विलक्षण आनंद का अनुभव होगा। नारायण नारायण नारायण
नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गासम में आषाढ़ शुक्ल एकम विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।